सत्यवचन।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओं हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। श्रोताओं आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने होशे नबी की पुस्तक की रूपरेखा पर विचार किया था, तो आज हम इसी रूपरेखा के दूसरे भाग पर विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जब जब मेरा मन घबराए, जब जब मेरा मन घबराए, प्रभु जी तेरी याद आए, प्रभु जी तेरी याद आए, जब जब
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब इन दिनों पुराने नियम में से होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से अध्ययन आरंभ कर चुके हैं। पिछले अध्ययन में हमने उसके प्रस्तावना को देखा और आज भी हम इस पुस्तक की प्रस्तावना को ही देखेंगे, क्योंकि यह हमारे अध्ययन के लिए अति आवश्यक है कि हम इसे जानें ताकि हम वचन का अध्ययन अच्छी रीति से कर सकें। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए जिसे आपने उन्हें दान स्वरूप दिया है, ताकि हम सब मिलकर फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। विशेष करके जब हम होशे नबी के जीवन से, उनके भविष्यवाणियों की बातों से सुनते और सीखते हैं, पिताजी आप हमें सिखाएं, समझाएं, ताकि हम अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कलीसियाई जीवन में, विश्वासपूर्ण जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम होशे की पुस्तक की प्रस्तावना को देख रहे थे कि माँ परिवार का केंद्र होती है और पिता के द्वारा परिवार पर आने वाली हर एक बुराई को सुधार लेती है, परंतु यदि वह भ्रष्ट हो जाए तो उसका पतन पुरुष से कहीं अधिक गहराइयों में पहुंच जाता है और त्रासदी को आंकना असंभव सा हो जाता है। होशे की पुस्तक भी एक पतित स्त्री और टूटे परिवार तथा दुखी पुरुष की कहानी पर आधारित है। परमेश्वर होशे के उदाहरण द्वारा अपनी कहानी सुनाता है। अब होशे की पुस्तक का आरंभ होता है। होशे की पुस्तक एक अध्याय उसके दो पद में लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। मेरे मित्रों, कुछ टीकाकारों का कहना है कि यह सत्य कथा नहीं है, यह मात्र एक उपमा है। परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा खिलवाड़ करना उबाऊ तथा जोश रहित है। परमेश्वर ने होशे से कहा कि वह मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करे। व्यवस्था के अनुसार उसकी पत्नी को पथरवाह करना था, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वह उससे विवाह करे। परमेश्वर का यह आदेश होशे के रोम रोम में विद्रोह उत्पन्न कर सकता था, परंतु होशे ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जी हां, होशे ने गोमेर से विवाह किया और उससे अपना नाम दिया। ऐसे संबंध के विषय में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है ये दोनों एक तन होंगे। मेरे मित्रों, यह तो निश्चित जान ले कि उस छोटे से नगर में अफवाह तो बहुत जल्दी उड़ी होगी। होशे का परिवार कटाक्षों के सागर में एक द्वीप सा बन गया था। वह समाज में बहिष्कृत माना जाता होगा। वह तो उस समाज में कोढ़ियों से भी बदतर हो गया था, क्योंकि उन दिनों में कोढ़ियों को समाज में रहने नहीं दिया जाता था। उसके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुए। उनके नाम इस भयानक कहानी का वर्णन करते हैं, जिसमें इसराइल राष्ट्र के लिए एक महान अर्थ है। जेठे पुत्र का नाम इज़राइल था। उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर तीतर वितर करेगा और परमेश्वर बदला लेगा। इसका सीधा संदर्भ येहू के घराने से था। यद्यपि येहू ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आहाब के घराने को नष्ट किया, उसके मन में आहाब के प्रति घृणा और बदले की भावना भरी थी। अतः परमेश्वर ने कहा, मैं दंड दूंगा, इसराइल को तीतर वितर कर दूंगा, परंतु मेरे न्याय में दया होगी। तब हम आगे देखते हैं, होशे के दूसरी संतान का नाम लोरुहामा था। इसका अर्थ है उसने पिता की दया को नहीं देखा। वह अनाथ तो नहीं थी, परंतु वह अपने पिता को नहीं जानती थी। होशे के परिवार में कैसी कलंक की स्थिति थी। परमेश्वर इस परिस्थिति द्वारा इसराइल राज्य से कह रहा था, तुम मेरी दया को नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। इसका कारण था कि वे मूर्ति पूजा में लग गए थे। अब हम देखते हैं, तीसरी संतान का नाम था लोआमी, अर्थात तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो। यदि इसे एक वचन में पढ़ ले तो इसका अर्थ है तू मेरी संतान नहीं है। होशे के युग में लोगों के लिए कैसा संदेश था। मेरे प्रियो, आज भी यह संदेश प्रासंगिक है। जब मुक्त विचारक कहते हैं कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर कहता है कि यह गलत है, उसकी संतान अवैध नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी संतान कौन है। क्या तुम सोचते हो कि मेरी संतान मनुष्य द्वारा स्थापित एकता से उत्पन्न है? कदापि नहीं। मनुष्य केवल प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा मेरी संतान बनता है। प्रभु यीशु ने उन इसराइलियों से कहा था जो अपने आप को अब्राहम के वंशज कहते थे, योहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे परमेश्वर की संतान होने का दावा करने योग्य नहीं थे। मेरे मित्रों, क्या आप लोआमी हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं या अवैध संतान हैं? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। यूहन्ना कहता है 1 अध्याय उसके 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। होशे की कहानी दुखद है, परंतु उसका अभी अंत नहीं हुआ है। गोमेर घर छोड़कर अपनी वेश्यावृत्ति में लौट गई। निश्चय ही परमेश्वर होशे से कहेगा, होशे, तूने तो यथा संभव सब कुछ किया, तूने तो उस स्त्री को सम्मान प्रदान करना चाहा, परंतु कोई लाभ नहीं, उसे जाने दे। नहीं, परमेश्वर ने होशे से कहा, जाकर उसे फिर घर ले आ। होशे उसे लेने गया तो उसने लौटने से इनकार कर दिया। उसके साथ वह आना नहीं चाहिए। उसने अपने बच्चों को भेजा कि मां को समझा बुझा कर घर ले आए, परंतु वह नहीं आई। उस समय ऐसी स्त्रियां अपने आप को दासत्व में बेच देती थी, अतः होशे उसे मूल्य देकर घर ले आया। ओह, मेरे मित्रों, यह हमारे उद्धारकर्ता का कैसा चित्रण है। उसने हमें सृजा और हम उसके हैं, तब हम संसार को अपना प्रेम, लगाव और समय देकर प्रभु से अलग हो गए। हम अभी पापी ही थे कि वह संसार में आया और हमें हमारी दुर्दशा में ही मूल्य देकर खरीद लिया कि हम उसकी वैध संतान हो जाएं। यह कैसा अद्भुत प्रेम है। मेरे मित्रों, इसके बाद भी क्या गोमेर ईमानदारी या वफादारी निभा पाई? वृतांत से तो हमें जानकारी नहीं मिलती है, परंतु हम देखते हैं कि होशे एक लज्जित परिवार से निकलकर टूटा दिल लेकर इसराइल के सामने आता है। उसका दुख असहनीय है, उसके गाल पर जलते हुए आंसू बह रहे हैं। वह इसराइल को दोषी ठहराते हुए कहता है, तुम लोग परमेश्वर के साथ बेवफाई कर रहे हो। मैं परमेश्वर के दुख को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी इसी स्थिति में हूं। तुमने परमेश्वर के दिल को तोड़ा है। मेरे प्रियो, यह कैसा चित्रण है। होशे ने उन्हें दोषी ठहराते हुए कहा कि उनका पाप अति महान है, काले से भी काला है, और परमेश्वर उन्हें अवश्य दंड देगा। ये वे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से छुड़ाया था। वे उसे जानते थे। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर ने उनसे कहा था, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उका पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। परंतु उन्होंने परमेश्वर की अपेक्षा सोने के बछड़े की उपासना की। और होशे के युग में भी वे सोने के बछड़े की उपासना कर रहे थे। इसराइल में दो सोने के बछड़े थे। दूसरे शब्दों में इसराइल वेश्यावृत्ति में मग्न था। उनका पाप भयंकर था। मेरे प्रियो, आप कहेंगे, मैं तो सोचता था कि अविश्वास एक भयानक पाप है। जी हां, अविश्वास एक भयानक पाप है, परंतु वह एक कार्य है, अवस्था नहीं। हम परमेश्वर से विद्रोह की अवस्था में ही जन्मे हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु की मृत्यु ने हमारे पापों का दंड चुका दिया है। यदि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें तो वह हमें बचा सकता है और बचा लेगा। यह सच है कि अविश्वास एक भयानक पाप है जिसका एक ही उपचार है, प्रभु यीशु में विश्वास करना। यदि आप अविश्वास में बने रहें तो आपने उपचार का त्याग कर दिया है। एक और भयानक पाप है, ज्योति के विरुद्ध पाप करना। प्रभु यीशु के सुसमाचार की ज्योति को देखकर भी उसका त्याग करना ज्योति के विरुद्ध पाप है। मैं परमेश्वर के समक्ष दूरस्थ जंगल का एक मूर्ति पूजक आदिवासी होना उचित समझता हूं, अपेक्षा इसके कि कलीसिया का सदस्य होकर सुसमाचार से मुंह मोड़ने वाला। परंतु यह एक भयानक पाप नहीं है। मेरे मित्रों, सबसे बड़ा पाप है प्रेम के विरुद्ध पाप करना। यह सबसे भयानक पाप है और होशे यही कहता है। गोमेर ने विवाह की वाचा तोड़ने का पाप ही नहीं किया, उसने अपने प्रेमी के विरुद्ध पाप किया है। मेरे मित्रों, प्रेमी परमेश्वर और प्रेमी उद्धारकर्ता के विरुद्ध पाप करना अन्य जातियों की मूर्ति पूजा और पाशविकता से अधिक भयानक है। यह अनैतिकता से भी गहरा है और काला है। यह दुष्ट आत्माओं की उपासना से भी अधिक भयानक है। होशे जानता था कि पाप क्या है और प्रेम क्या है। प्रेम के विरुद्ध पाप करना अत्यधिक पाशविक है। इसराइल अन्य जातियों से अधिक परमेश्वर के प्रेम को जानता था। वह उसके उद्धार, उसकी मुक्ति, सुरक्षा, क्षमा, उसके प्रकाशन और उसके प्रेम को भी जानता था। परंतु फिर भी वे मूक मूर्तियों की उपासना कर रहे थे। यह घोर अपराध है। आज हम में से कई लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, कलीसियाओं में आते हैं, परंतु वे आज परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। मेरे प्रियो, क्या आज हम उन इसराइलियों के समान हैं? क्या आज हम होशे की पत्नी गोमेर की तरह तो नहीं हैं कि विवाह के बाद अर्थात प्रभु यीशु के पास आने के बाद फिर हम बेविचारी जीवन, पापमय जीवन जी रहे हैं? हम यहां पर देखते हैं कि यह घोर अपराध है, परंतु परमेश्वर उन्हें त्यागेगा नहीं, प्रेम जयवंत होगा। मैं होशे की पुस्तक के 3 पदों द्वारा परमेश्वर की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। पहला, होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 पद लिखा है, एप्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। एप्रेम अर्थात इसराइल। परमेश्वर इसराइल को आत्मिक व्यभिचार का दोषी ठहराता है। अब अनंत परमेश्वर की धड़कती हुई भावना को देखें, होशे 11 अध्याय उसके 8 पद में, हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इसराइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल को त्याग नहीं सकता है, वह उससे बहुत प्रेम करता है। यही कारण था कि उसने होशे को दूसरी बार और तीसरी बार गोमेर को लौटा लाने के लिए भेजा था। वह होशे पर प्रकट करना चाहता था कि वह इसराइल के बारे में कैसी भावना रखता है। अंत में विजय आती है। होशे 14 अध्याय उसके 8 पद में एप्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं हरे सनावर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। वह दिन आता है जब इसराइल परमेश्वर की ओर फिरेगा। इससे हमें संकेत मिलता है कि अंत में गोमेर बदल गई और एक अच्छी पत्नी और अच्छी माता बनी। मेरे प्रियो, क्या यह आत्मिक व्यभिचार का भयानक वर्णन हमारे युग के विश्वासियों के लिए प्रासंगिक है? जी हाँ, कलीसिया प्रभु यीशु की दुल्हन है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 2 पद में, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। तब हम आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 और 4 पद में, प्रभु यीशु इफिसूस की कलीसिया से कहता है, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे मित्रों, आपकी धर्म शिक्षा में सदा यही बात पाई जाती है। हो सकता है कि आपकी धर्म शिक्षा में सही होना और प्रभु की सेवा में सक्रिय रहना ही पर्याप्त नहीं है, जबकि यह आवश्यक है, परंतु मुख्य बात है प्रेम। क्या अपने पहले प्रेम को आपने त्याग दिया है? क्या आप आज भी उससे प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम करते हैं? होशे का अर्थ है उद्धार, जैसा यहोशु है, जो यूनानी शब्द में यीशु का इब्रानी शब्द है। अतः कलीसिया नए नियम के होशे की दुल्हन है, परंतु हमारा होशे आत्मिक व्यभिचारिणी से जुड़ा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 17 में बाइबिल का एक भयावह दृश्य है। वहां कलीसिया को बड़ी वेश्या कहा गया है, रहस्यमय बेबीलोन। आज की व्यवस्थित कलीसिया का व्यवहार ऐसा ही है। कितने विश्वासी व्यस्त होने के बहाने अपनी निराशा और सच्चाई की कमी को छिपा रहे हैं। यह एक मानसिक व्याथा है। मेरे मित्रों, मैं सत्यनिष्ठा से नहीं कह सकता, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसका सच्चा भक्त हूं। ज्वलंत आंसुओं के साथ हमारा प्रभु कहता है कि कलीसिया गुनगुनी है। परमेश्वर ऐसे पुरुष पर दया करे जिसने एक गुनगुनी स्त्री से विवाह किया हो। परमेश्वर एक गुनगुनी कलीसिया से जुड़े प्रभु यीशु पर दया करे। वह कहता है, तू गर्म होता या ठंडा होता, परंतु वह तो गुनगुना है। मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं, क्या आपकी आत्मा और आपके उद्धारकर्ता के बीच कोई बादल आ गया है? एक बार स्पर्जन, जो एक बहुत बड़े वक्ता हैं, सड़क के बीच ही प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गए। सड़क पार करने के बाद उसके साथी ने पूछा, आपने सड़क के बीच खड़े होकर प्रार्थना क्यों की? स्पर्जन ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु यीशु के मध्य एक बादल आ गया था और मैं सड़क पार करने तक उसे रहने देना नहीं चाहता था। प्रभु यीशु ने शमौन पर लगाम लगाने से पूर्व पूछा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 17 पद में क्या तू मुझसे प्रेम करता है, यह प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गलील सागर के तट पर उस सुबह था जब उसने पत्रस से पूछा। मेरे मित्रों, यदि आप उस परमेश्वर से मुंह मोड़ लें जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, तो आप बुराई नहीं, अविश्वास ही नहीं, एक भयानक पाप करते हैं। आप एक प्रेमी परमेश्वर से दूर जा रहे हैं जो आपके लिए मर गया। इसके तुल्य अन्य कोई पाप नहीं कि आप उसे जानते हुए भी स्वीकार ना करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको इस पुस्तक के द्वारा यही बताना चाहता है कि वह मुझसे अभी भी प्यार करता है, आपसे उतना ही प्यार करता है, चाहे आप कितना ही पापपूर्ण जीवन क्यों ना जी रहे हो, वह चाहता है कि आप उसके पास वापस आ जाएं। वह आपको स्वीकारने के लिए तैयार है, जिस प्रकार होशे उसकी पत्नी जो वेश्या में चली गई वापस लाने के लिए गया नहीं आई, लेकिन उसका पति उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। परमेश्वर यहां पर मुझे और आपको परिवार के द्वारा उदाहरण दे रहा है कि वह मुझसे और आपसे प्यार करता है ताकि हम उसके परिवार में आ जाएं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही परमेश्वर के प्रेम को जाना है, उस पर विश्वास करने की बात को जाना है और उस महान पाप को भी जाना है और आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में लाभ प्राप्त किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।